प्रेज गॉड, मसीह यीशु में सब भाई को सलाम। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो बेहतरीन एक चीज है जो आपको सेहतमंद रख सकती है, वो है खुशी। जब आप खुश रहेंगे तो यकीनन आप सेहतमंद रहेंगे। बगैर देर किए हुए आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और दुआ से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं वो सरनगुण हो जाए और खुदा से कलाम मांगे, क्योंकि खुदा ही हमसे कलाम करता है। हालेलुया 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 रब्बा का साला रब्बा हालेलुया हालेलुया रब्बा जीदर रब्बा जोलर रब्बा जंतरा रब्बी बी 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 हालेलुया रब्बा शबा खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद इस वक्त इस घड़ी के लिए। सबसे बेहतरीन और कीमती घड़ियां होती है खुदावंद जब हम तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार होते हैं खुदावंद, और यकीनन तू हमसे कलाम करता है, तू अपने कलाम को नाजिल करता है। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद आज के खुदावंद इबादत के लिए, आज के कलाम के लिए खुदावंद, तुझसे बरकत चाहता खुदावंद, अपने कलाम को नाजिल कर खुदावंद, इस प्याले को अपने कलाम से लबरेज कर दे खुदावंद। और खुदावंद बुजुर्गों को तेरे कंट्रोल में देता हूं, सुनने वालों को तेरे कंट्रोल में देता हूं, तेरे मस्सा में देता हूं, क्योंकि तेरा मस्सा हमें सुखाता है, तेरा मस्सा हमारा बेहतरीन उस्ताद है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तेरे मस्सा के लिए, आज हमें रूह का ताजा मस्सा दे, अपनी रूह से ममूर कर दे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद क्योंकि तेरे कलाम में मरकूम है, मुबारक है वो जो हलीम दिल है, वो जमीन के वारिस होंगे खुदावंद। हमें हलीम बना ताकि खुदावंद जब हम तेरी आवाज को सुने तो हलीमी के साथ कबूल करने वाले बने खुदावंद। तेरे कलाम में मरकूम है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो असूदा होंगे खुदावंद। वो खुदावंद आज हमें अपने कलाम के वसीला से असूदा कर खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद इस बेहतरीन खुदावंद इंतजाम के लिए, मीडिया सिस्टम के लिए, वो खुदावंद इस बेहतरीन काम के लिए। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदावंद, ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरा रहम है, ये तेरा प्लान है कि खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से दुनिया निजात पाए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद इस बड़ी निजात के लिए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद आज जब तुम से कलाम करे खुदावंद तो हमें अमली जिंदगी अता कर, क्योंकि खुदावंद लिखा है मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे खुदावंद। वो खुदावंद जब हम तेरे कलाम को सुने तो अपने जामों को धोए खुदावंद, मुकद्दस हो जाए तेरे कलाम की वसीला से खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद अपने कलाम को नाजिल कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज गॉड। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट होती है कि जब आप इस कलाम को सुने तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे। आज का मैसेज बड़ा अहम है। वैसे तो खुदा का शुक्र है कि सारे मैसेज खुदा के बड़े अहम होते हैं, लेकिन आज बड़ी जबरदस्त बात है सीखने की। जहन्नम की आग, जहन्नम की आग से हम कैसे बच सकते हैं? क्या खुदा ने कोई सिस्टम ऐसा बनाया है कि इंसान जहन्नम की आग से बच सके? क्योंकि दो ही जगह है जहां जाना है, या तो जहन्नम में जाना है और या जन्नत में जाना है। और यह मैसेज सारी दुनिया के लिए है, और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिस जिस को यह मैसेज मिले या खुदा के कलाम की आवाज पहुंचे वो इस मैसेज को जरूर शेयर करें और जरूर सुने, क्योंकि आखिर हम सब का हिसाब होना है, या हमने जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। तो जहन्नम से बचने का तरीका क्या है वो आज इस मैसेज में है, तो आप जरूर सुनिए और जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बगैर देर किए हुए बुजुर्गों को दावत दूंगा कि वो आए और वो खुदा का कलाम जो आज हम तक देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, वो दें। बुजुर्ग,
खुदा जलाल के पाक नाम यीशु से मैं आपको सबको सलाम पेश करता हूं। खुदा की हजूरी में बैठने के लिए, इस प्रोग्राम को वाच करने के लिए खुश आमदीद भी कहता हूं। आपको पता है कि इन दिनों मसीहों के जो इंटरनेशनली तौर पर रोजे के याम गुजर रहे हैं, अब हम उसके आखिरी वीक में पहुंच चुके हैं जिसको होली वीक का नाम दिया जाता है। तो मेरे दिल में यह बात आई कि हम दिन ब दिन सलीब की तरफ बढ़ रहे हैं, और सलीब का पैगाम जिसके बारे में पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती के साथ कलीसिया को यह सिखाया और मैं चाहता हूं कि हम इस पैगाम को सीखें, क्योंकि मुझे समझ आती है कि यह पैगाम एक बहुत बड़ी खुशखबरी रखता है। तो मैं चाहता हूं कि कलसियों का पहला खत, पहला कलसियों है, उसका पहला ही बाब है और उसकी 18वीं आयत।
क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है।
बस इतना काफी है। पौलुस रसूल कहता है कि यह सलीब एक पैगाम देती है। मैं यूं समझता हूं कि दुनिया में हर चीज पैगाम देती है। अब कहेंगे कि सलीब ने क्या पैगाम देना है, ये तो मुर्दा सा एक चीज नजर आती है, ये हिल नहीं रही, ये तो खड़ी चीज है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपके इर्द गिर्द का सारा माहौल, वो चल रहा हो, स्टेशनरी हो या मूविंग में हो, हर चीज एक पैगाम देती है। मैं बड़ी सादगी के साथ इन बातों को मैंने सीखा है और आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर आप घर में अपनी चीजों पर निगाह करें तो आपकी टेढ़ी, अगर कुर्सी टेढ़ी पड़ी हुई है तो वो भी पैगाम दे रही है कि मुझे सीधा कर दो। अगर घर में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर मक्खियां बिन बना रखी है, तो मेरे ख्याल में वो बहनों के लिए पैगाम है कि हमें धो लो। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि हर चीज पैगाम देती है। अगर किसी को पैगाम की समझ आ जाए, इसी तरह यह सलीब जो है यह भी एक पैगाम देती है। पौलुस रसूल कहता है सलीब का एक पैगाम है, और वो पैगाम जो है वो हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी का पैगाम है, लेकिन जो निजात पाने हैं उनके नजदीक वो बड़ी खुदा की कुदरत जाहिर करता है वो पैगाम। मैं भी चाहता हूं कि इस पैगाम को समझने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर जाए। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब तक पहुंचने के लिए हमें कलवरी के पहाड़ पर जाना पड़ेगा। कलवरी के पहाड़ पर जब जाएंगे तो हमें वहां पर एक सलीब नहीं, हमें तीन सलीबें नजर आती है, जिस तरह के बाइबल मुकद्दस के सिस्टम के अंदर नजर आता है। मेरे खुदावंद के साथ दाएं बाएं दो डाकू या दूसरे लफ्जों में दो पापी मसलूब हुए थे। अब दाएं पर भी पापी है और बाएं पर भी पापी है, लेकिन गौर कीजिए, दरमियान में पापी नहीं, पापियों को बचाने वाला है। वो कैसे समझ आई? जब उसने एक पापी को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। अब हम इसकी बात भी नहीं करते, इसकी बात भी नहीं करते। वैसे ये खड़ी सलीबी को पैगाम दे रही है, पापी की सलीब ये पैगाम दे रही है कि भाई मैंने कोई जुर्म किया था और इस जुर्म की सजा है। सलीब पैगाम देती है कि जो बंदा गुनाह करेगा वो यहां पर आकर मरेगा। तो मतलब कहने का ये है, क्या यीशु की सलीब जो है ये क्या पैगाम दे रही है? यीशु की सलीब एक पैगाम नहीं देती, यीशु की सलीब दो पैगाम देती है, एक नहीं बल्कि दो। वो अगली बात है कि उस पैगाम को लिया कैसे जाता है। हम इस पैगाम को समझने के लिए, जिसके बारे में पौलुस ने कहा सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है और निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, इसको समझने के लिए कैसे ये बात उसने कह दी, इसकी बड़ी सादा सी तशरीह है। इसको समझने के लिए मेरे ख्याल में हम यूहन्ना की इंजील के तीसरे बाब में चलते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है। खुदावंद यीशु मसीह के पास रात को एक बंदा आया है, यहूदियों का सरदार है, निकोदिमुस उसका नाम है, और वो रात को यीशु के पास आकर कहता है कि रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। फिर मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने उसको नए सिरे से पैदा होने की तालीम दी, और तालीम देते देते मैं कहता हूं हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं। 12वीं आयत, 12वीं से पढ़ते हैं जी।
जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया।
एक मिनट, जब निकोदिमुस को यीशु मसीह ने नए सिरे से पैदा होने की बात की है तो ये बात जमीनी बात है, ये काम अपने जमीन पर करना है। आगे पढ़िए।
और तुमने यकीन नहीं किया।
हाँ जी।
अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे?
पढ़ते जाइए।
और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है।
और 14वीं आयत है जिसके हम सामने रखकर इन बातों को सीखने लगे हैं जी।
और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया।
अब सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदिमुस को, जो यहूदियों का सरदार है, डायरेक्ट उसके जहन को ले गया है गिनती की किताब के 21वें बाब में, क्योंकि वो यहूदियों की तारीख से वाकफ है, वो पुराने अहद से वाकफ है, वो मिस्र से निकलने वाले इसराइलियों से वाकफ है, कनान में पहुंचने वाले इसराइलियों से वाकफ है, उसको पता है कि पीछे क्या हुआ तारीख में। तो मेरे यशुसी ने गोया यूं कहा, पढ़िए दोबारा,
और जिस तरह मूसा ने सांप को बयाबान में ऊंचे पर चढ़ाया,
एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, कभी मिस्र से ये निकले थे और एक वक्त आया था कि मूसा ने एक पीतल का सांप बनाया था, उसको एक ऊंचे पर बल्ली पर चढ़ाया था, ये लटकाया था। अब इस बात को समझने के लिए हम अभी वापस पीछे भी जाएंगे, लेकिन आगे यीशु क्या कहता है, पढ़िए,
उसी तरह जरूर है कि अपने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए
ताकि
जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए।
अब ये जानने के लिए कि वो क्या हुआ था, मेरे ख्याल में हम जाते हैं और पढ़ते हैं 21वां बाब, गिनती की किताब का 21वां बाब। सब निकालिए जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मेहरबानी करके गिनती की किताब का चौथा बाब जो है 21वां बाब है और उसकी चौथी आयत पढ़ने लगे हैं जी।
फिर उन्होंने कोएहूर से रवाना होकर बहरे कुलसम का रास्ता लिया,
ये वो जगह है जहां हारून की डेथ हो गई थी, हाँ जी,
ताकि मुल्के अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाए, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई।
उन लोगों की यानी इसराइलियों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई। थोड़ा सा मुश्किल सा फ्रेज है या मुश्किल सा आइडियम है, मुहावरा है, इसका मतलब होता है जान आजिज आ जाने का मतलब होता है तंग पड़ जाना, किसी चीज से बेसब्रे हो जाना, अंग्रेजी में दे ग्रू इंपेशेंट, हाँ जी।
और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे,
लोग शिकायत करने लगे, और ये सच है कि जब बंदा तंग पड़ जाए तो हमेशा उसकी जुबान पर शिकायत आती है, वो अपनी बीवी से तंग पड़ जाए, वो अपने बच्चों से तंग पड़ जाए, वो एक ही तरह की खुराक खाने से तंग पड़ जाए, वो या माहौल से तंग पड़ जाए या अपने इदारे से तंग पड़ जाए, तो वो हमेशा शिकायत करता है। तो वो भी शिकायत करने लगे, मूसा की भी, उसके बाद खुदा की भी, हाँ जी,
कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए,
हाँ जी,
यहाँ तो न रोटी है न पानी,
बढ़ते जाइए,
और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है।
जब उन्होंने उस खुराक को जो आसमान पर से उनको मिलती थी और हर रोज मिलती थी और ताजा मिला करती थी और बगैर हाथ हलाए मिला करती थी, खुदा इतनी बड़ी बरकत उनको 40 साल तक देता रहा, इतने साल हो गए उस खुराक को खाते हुए, और अब कह रहे हैं कि ये निकम्मी खुराक है और हमारा तो जी इस निकम्मी खुराक से वैसे ही तंग आ गया है, हाँ जी।
तब खुदावन ने उन लोगों में जिलाने वाले सांप बेच दी।
खुदा शिकायत पसंद नहीं करता, जब उन्होंने शिकायत करना शुरू की तो खुदा ने जलाने वाले सांप बेच दिए। जलाने वाले सांप का मतलब है ऐसे सांप जब वो काटते थे तो जलन होती थी और जलन होने के बाद शदीद जलन के बाद बंदा मर जाता था, हाँ जी।
उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मर गए,
बहुत से इसराइली मर गए सांपों की वजह से, हाँ जी।
तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की।
अब बड़ी खूबसूरत बात है, उनको समझ आ गई है कि ये सांप जो हमें काट रहे हैं, हमारे बंदे मर रहे हैं, उसका सबब यह है कि हमने शिकायत की है। और ये बड़ी जबरदस्त बात होती है जब किसी को अपना गुनाह या अपनी कमी समझ आ जाए, हाँ जी।
तो सो तू खुदावन से दुआ करके वो इन सांपों को हमसे दूर करे,
हाँ जी।
चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की, तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले।
अब ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है, जब मूसा ने दुआ की, हो सकता है मूसा ने कहा खुदावन अब तो अपना गुनाह मान गए हैं, अब ऐसा कर सांपों को दूर कर दे, तो खुदा ने सांपों को दूर नहीं किया, बल्कि खुदा ने एक इलाज बताया है, इन सांपों से बचने का इलाज बताया, वो क्या है जी।
तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले,
ऐसा कर एक जलाने वाला, जैसे ये जलाने वाले सांप है ऐसा ही एक जलाने वाला सांप बना ले
और उसे एक बल्ली पर लटका दे,
एक बल्ली पर उसको लटका दे, जिस तरह आपके सामने ये तस्वीर नजर आ रही है,
और जो सांप का ढसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा।
अब अगली बात यह है कि जब ये सांप बना दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा, तो फिर लोगों को बताना भी तो है, बताने की तो जरूरत है ना कि ये सांप क्यों लटकाया गया है, इसका मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है।
तो आगे पढ़िए जरा।
चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया।
अब ये सांप तो असल वाले हैं, लेकिन उसने एक इन जैसा ही पीतल का सांप बनवाया और उसको बल्ली पर लटका दिया। और फिर क्या किया?
और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया।
अब गौर से सुनिए, बनाने के बाद, लटकाने के बाद समझ आती है कि लाखों की तादाद में इसराइली हैं। अब उनको पैगाम दिया गया है कि भाई सुनो भाई, अब अगर किसी को सांप काट जाए तो तुमने ऐसा कर रहे हैं कि ये जो पीतल का सांप मूसा ने लटकाया है और ये ऊंचे पर लटकाया है, जो कोई सांप का डसा हुआ इस बल्ली पर लटके हुए सांप को देखेगा वो जीता बचेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़ा एक पैगाम था जो पूरी बनी इसराइल कौम को सुनाया गया, जिससे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जो सांप का डसा हुआ इस पीतल के सांप को पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। ये पैगाम था और ये पैगाम इसराइलियों के लिए था, क्योंकि इसराइलियों को जलाने वाले सांप काट रहे थे और वो मर रहे थे। अब इस पैगाम को लोगों ने सुना, ये पैगाम है जिसको सुनाया गया, ये पैगाम उस वक्त सुनाया गया जब बल्ली पर सांप लटका दिया गया। अब हुआ ये, इस पैगाम को, ये जो पैगाम दुनिया को इसराइलियों को सुनाया गया, अब इस पैगाम का कईयों ने यकीन किया और कईयों ने यकीन न किया। अब ये बड़ी समझने वाली बात है। कलाम कहता है कि जिन्होंने यकीन किया उन्होंने इस सांप को देखा और जिन्होंने देखा वो बच गए, और जिन्होंने उस पैगाम का यकीन न किया उन्होंने परवाह न की और ना इसको देखा, इसको कोई अहमियत ना दी और वो मर गए। आगे पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है। और ऐसा हुआ,
चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया और ऐसा हुआ
और ऐसा हुआ। भाई वाकई ऐसा हुआ है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक्चुअल ऐसे हुआ है। और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने, सांपों ने तो बहुत से आदमियों को डसा है, लेकिन कलाम कह रहा है कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो हलाक
ना हुआ,
जिन्होंने निगाह ना की वो हलाक हो गया और जिन्होंने निगाह की वो
जीता बच गया।
अब जिन्होंने उस पैगाम का यकीन कर लिया उन्होंने निगाह की, वहां जिन्होंने निगाह की वहां खुदा की कुदरत जाहिर हुई, और जिन्होंने यकीन ना किया निगाह ना की वो समझे कि ये पैगाम बेवकूफी का पैगाम है। मैंने बहुत साल पहले जब इस पैगाम पर गौर किया तो मैंने कहा कि इस पैगाम की तो वाकई समझ नहीं आती, ये तो पैगाम है ही बेवकूफी का, ये तो कोई सही पैगाम तो मुझे नहीं लगता। आप भी मुझे बताएं, सुनने देखने वाले, स्लाइड भी आपके सामने है। भाई देखो, अगर आपको सांप काट जाए तो क्या इसको देखने से यहां से कोई चीज निकलेगी जो ऐसे करके आंखों के जरिए जाएगी और सांप का जहर दूर कर देगी? ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। सांप ने खाटा हुआ है, सांप का जहर बदन में फैल रहा है, अब तो कोई ऐसी चीज चाहिए, कोई इंजेक्शन चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जो उस जहर को पीछे बाहर निकाले। अब आप भी मुझे बताएं कि क्या इसको देखने से, इसके अंदर से कोई चीज आ रही है इधर को? मैं साइंस मैंने पढ़ी है, मैंने तो यह सीखा है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो जिसको देखते हैं वहां से इधर कोई चीज नहीं आती और यहां से भी कोई चीज वहां नहीं जाती, अलबत्ता वो रिफ्लेक्शन जरूर होती है, लेकिन कोई चीज इसके अंदर से निकल कर ऐसी नहीं आ रही कि वो अंदर आंखों के जरिए आ रही हो और जना वो उधर से जहर को निकाल रही हो। ये मेरी समझ में नहीं आता। इस पैगाम को अगर आपको भी ये कहा जाए कि भी आपको सामने डस लिया है, वो दूर से पीतल के सांप को देखो ठीक हो जाओगे, आप कहेंगे ये कितनी बेवकूफी की बात है, कोई इंजेक्शन लगाने की बात करो, कोई डॉक्टर या इमरजेंसी में ले जाने की बात करो, ये तो कोई बात ही ना हुई। लेकिन एक मैं आपसे पूछने लगा हूं, क्या ये पैगाम मूसा ने खुद बनाया है? क्या उसने ये पीतल का सांप खुद बनाया है? क्या ये पैगाम उसका अपना बनाया पैगाम है? नो, ये पैगाम उसका अपना बनाया नहीं, ये खुदा की प्लानिंग है, ये खुदा की प्लानिंग है। खुदा कुछ सिखाना चाहता है इसराइलियों को भी और इसराइलियों के बाद दुनिया को सिखाना चाहता है। अब गौर से सुनिए, नीकोदेमुस जिस तरह का भी किस तरह सिखा रहा था मेरा खुदावत निकोदिमस, जिस तरह मूसा ने कभी पीतल के शव को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी तरह जरूर है इब्ने आदम जो तुझसे बातें कर रहा है, जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मेरे यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत की प्लानिंग जो थी वो निकोदिमस को बताई। निकोदिमस को शायद बेहतर समझ आ जाएगी कि जो मकसद सांप का ऊंचे पर चढ़ाया जाना था वही मकसद मेरा ऊंचे पर चढ़ाए जाने का है। यह सांप को ऊपर ऊंचे पर चढ़ाया गया ताकि जो सांप का जैसा इस पीतल के सांप पर निगाह करे वो बच जाए, और मुझे भी ऊपर चढ़ाए जाने का मकसद यही है जो मुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये थी प्लानिंग निकोदिमस को बताई। खुदा ने बहुत साल पहले यह बड़ा काम किया, खुदा ने यह एक बड़ी एग्जाम्पल दी। वैसे पौलुस भी कहता है कि यह शरीयत जो है वो आने वाली चीजों का अक्स थी, वहां पर खुदा ने कुछ बताया है, वहां पर खुदा ने अक्स दिया है। पौलुस कहता है असल चीजें मसीह की हैं। वहां सांप को ऊंचे पर चढ़ाया गया, शरीयत में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया गया है, और जब फसल के दौर में आते हैं तो वहां पर आपको नजर आता है कि यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया है। कलाम के मुताबिक जैसे वैसे, जिस तरह उसी तरह। अब यह समझ आती है कि सलीब पर मेरे खुदावंद को जब ऊंचे पर चढ़ाया गया है, नजर तो आ रहा है कि ऊंचे पर चढ़ा हुआ है, शायद लोग समझ रहे होंगे ये मुजरम है। मुजरम नहीं, ये तो ऊंचे पर चढ़ाया गया है, ये सांप के डसे हुओं को बचाने के लिए ऊपर चढ़ चढ़ाया गया। ये बात आम बंदे को समझ नहीं आ सकती, लेकिन अगर आज आप इन बातों को समझने की कोशिश करें तो आपको समझ आ जाएगी। ये तो जुर्म के सबब से ऊंचे पर चढ़ाया गया है, ये भी जुर्म के सबब से ऊंचे पर चढ़ाया गया है, लेकिन ये जो दरमियान वाला ऊंचे पर चढ़ाया गया है, इसने कोई जुर्म नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसको इसलिए ऊंचे पर चढ़ाया गया है ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और अगली आयत यही लिखी हुई है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वाला जो प्रोग्राम था जिसकी बात हम कर रहे हैं गिनती की किताब 21वें बाब में, यहां पर खुदा को इसराइलियों से मोहब्बत है। इसराइलियों को सांप डस रहे हैं और सांपों के सबब से वो मर रहे हैं, उनको जिस्मानी मौत से बचाने के लिए पीतल का सांप काफी है। अब इधर भी एक मौत है और ये दुनिया भी मौत से मर रही है, ये जिस्मानी मौत है लेकिन इधर रूहानी मौत है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है और गुनाह की मजदूरी के सबब से लोग मौत यानी दूसरी मौत यानी जहन्नम यानी आग और गंधक से जलने वाली झील में जाएंगे। मुझे बताएं क्या उससे बचने का कोई तरीका है? उससे बचने का तरीका है, अगर जिस्मानी मौत से बचने का तरीका पीतल का सांप है, और तो याद रखिए रूहानी मौत से बचने का तरीका मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। यह है बेसिकली पैगाम। अब इस पे यहां तो था कि जो कोई निगाह करे। अब मैं आगे चल जाना चाहता हूं। कलाम कहता है ऐसा हुआ ऊंचे पर चढ़ाए जाने के बाद पैगाम को जारी कर दिया गया, पैगाम जारी कर दिया गया। मुझे नहीं पता वहां पर कितने लोग थे जो जगह जगह पैगाम सुना रहे थे। मूसा के साथ 70 शख्स और भी थे, शायद उनको मुकर्रर किया हो कि चलो तुम लोगों को मुकर्रर इसलिए किया था मेरी हेल्प करो, और भाई इस पूरे इसराइलियों के दरमियान जाओ वहां पर मुनादी कर दो, जो सांप का डसा हुआ इस पीतल के सांप पर निगाह करेगा जीता बचेगा। अब जगह जगह ये मुनादी हो रही है। अब कुछ लोग इस पैगाम को गौर कर रहे हैं, यार ये क्या पैगाम दिया जा रहा है, सांप का डसा हुआ इस पीतल के सांप पे निगाह करे, ये किधर की बात है बना। लेकिन कुछ कहते होंगे नहीं, मूसा ने अपनी तरफ से नहीं बनाया होगा, जरूर खुदा की प्लानिंग होगी, क्योंकि मूसा कुछ नहीं करता, जो खुदा कहता है वही करता है। तो आप ऐसा करें, कई लोग जो थे मैं कहता हूं वो आए होंगे, जैसे कलाम में लिखा हुआ है जिस जिस सांप के डसे उस पर निगाह की, जिस जिसने देखा अब मुझे जिस तरह ये छोटी सी हल्की सी तस्वीर आपको सामने आती, इसका मकसद यही होता है कि बात की समझ आ जाए। शायद इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसका बाप इसको लेकर आया, बेटा इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, कि बच्चा हो गया। उसने देखा, बच गया। एक और आ रहा है, वो भी मरने लगा, उसको बस देखना ही तो है, करना क्या है, वो मुश्किल काम थोड़ी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने बिलीव किया, जिन्होंने पैगाम का यकीन किया, उनके बड़े भी अपने बच्चों को ले आए और वो बड़े खुद भी आ गए। आप अंदाजा करें, खुदा के कलाम की बात पैगाम पर ईमान लाने के सबब से, पैगाम पैगाम पर ईमान लाने के सबब से, जिस जिस सांप के डसे हुए शख्स ने उस पैगाम का यकीन किया और देखा, तो खुदा की कुदरत ज़ाहिर हुई और वो जीता बच गया। और जिन्होंने उस पैगाम को पर बिलीव ना किया, वो दुनिया के सामने मर गया, पीतल का सांप होते हुए भी मर गया। आप अंदाजा करें, अगर कोई शख्स मर गया है तो मुझे पता है पीतल के सांप का कसूर है कोई? अगर कोई बच गया है तो इसका मतलब है बचने और मरने के दरमियान फैसला है। जिसने फैसला कर दिया मुझे दिखाओ, वो बच गया। जिसने फैसला किया मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं इस पैगाम की समझ आती, ये पता नहीं क्या पैगाम आप बता रहे हैं, देखने से कोई जहर खत्म हो जाएगा, ये कौन सा पैगाम है, ये तो बेवकूफी का पैगाम है। और यही बात पौलुस रसूल ने कही है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अब ये देखें, जिस तरह बल्ली पर सांप लटकाया गया, उसी तरह मेरा खुदाबंद यीशु मसीह ऊंचे पर लटकाया गया है। जब ये बातें हो रही थी निकोदिमुस वाली, अभी तो यीशु यरूशलम को गया ही नहीं था इस काम के लिए, लेकिन जब यीशु मेरा चला गया, मेरा खुदाबंद मर गया, मेरा खुदाबंद दफन हो गया, मेरा खुदाबंद जिंदा हो गया, 40 दिनों तक शागिर्दों को नजर आता रहा, जाने से पहले उसने कहा ऐसा करो, अब सारी खलक के सामने जाकर अंजील की बनादी करो, ऊंचे पर मैं चढ़ गया हूं, ऊंचे पर मैं चढ़ गया हूं, जिस तरह सांप बल्ली पर लटका दिया गया था, मुझे भी ऊंचे पर लटका दिया गया है। अब दुनिया को बता दो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सारी खलक को बता दो। अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये जो पैगाम है सलीब का, वो पैगाम तो था सिर्फ इसराइलियों के लिए, सलीब का पैगाम इसराइलियों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि पूरी दुनिया को निजात की जरूरत है। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अब एक ही चीज है जो खुदा के जलाल में हमें दाखिल कर सकती है, और वो है मेरे खुदावंद यीशु मसीह की इस अंजील की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी बाबत यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में तुम और रसूल इस इलाके में आया, शागिर्द पता नहीं कहां कहां गए, उसके बाद अब भी खुदा के खादम जगह जगह यही पैगाम दे रहे हैं यीशु मसीह की बाबत, खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। मुबारक जुमे वाले दिन का यह बेहतरीन पैगाम है। अब सब लोग मुबारक जुमे वाले दिन, मुझे पता है जहां जहां भी गुड फ्राइडे मनाया जाएगा वहां पर स्लीप की बातें होगी, सब लोग यीशु की स्लीप को देखेंगे, यीशु को स्लीप पर देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्लीप जिस पर कोई लटकाया गया है, जिस पर कोई चढ़ाया गया है, जिस पर कोई मसलूब किया गया है, असल में ये पैगाम क्या है? ये पैगाम है हलाकत से बचने का पैगाम, हलाकत से बचने का पैगाम। ये यहां भी हलाकत से बचने का पैगाम था। अगर कोई हलाकत से बचना चाहता है तो देख ले, ये भी है, अगर गुनाह की मजदूरी मौत है, अगर कोई इस हलाकत से बचना चाहता है तो फिर इस पर ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। ये है सिंपल सिंपल सी बात। अब यहां पर भी क्या है, जिस तरह उस तरह, जिस तरह जो लोग ईमान ना लाए, जिन्होंने नगर ना की, वो जिस्मानी मौत मर गए, और इसका भी पैगाम उसी तरह ही है, जिस तरह उसी तरह जो ईमान लाते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, खुदा का शुक्र है वो निजात पाते हैं। मैं चश्मदीद गवाह हूं, मेरे और बहुत से दुनिया में भाई चश्मदीद गवाह है। तो वो लोग जो कलाम को सुन रहे हैं, अगर उन्होंने निजात पाई है तो आप भी मुझे बताएं कैसे पाई है। क्या आप सलीब के पैगाम पर ईमान नहीं लाए थे? क्या आपने बपतिस्मा नहीं लिया था? तभी तो निजात पाई, तभी तो आपकी जिंदगी बदली है। तो ये सारा सारा काम किसने कुदरत किया है? ये बड़ी कुदरत कैसे जाहिर हुई है? कैसे आपने नशाबाजी छोड़ी है? कैसे आपकी जिंदगी बदली है? ये पैगाम की कुदरत है और ये सलीब के पैगाम की कुदरत है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के, इस हलाक होने का मतलब है जहन्नम, और निजात पाने वालों को नजदीक खुदा की कुदरत। मैं बड़ी सादगी से बताना चाहता हूं, जो लोग इस पैगाम को नहीं मानते वो सीधे सीधे वो समझते ये बेवकूफी की बात है, कहां जाएंगे? जहन्नम में। मेरा दिल नहीं करता कि मैं खुशी से ये बात कहूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, तमाम सुने पूरी दुनिया के लिए, सारे खलक के लिए, अगर कोई जहन्नम से बचना चाहता है, वैसे मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, तो तकरीबन तमाम मज़हब जहन्नम और दोज़ख को और जहन्नम की आग को मानते और जानते हैं, गुफ्तगू करते हैं। जहन्नम में आग होगी, वहां लोग जलेंगे, मरेंगे, सजा होगी। अरे कोई बचने का तरीका भी है? कोई बचने का तरीका है जहन्नम से? और सुनो, ये है बचने का तरीका, ये निजात का पैगाम है, ये बचने का, ये जहन्नम से बचने का पैगाम है। अगर किसी ने जहन्नम से बचना हो तो इस पर ईमान लाए, बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, वो इस आग से बचकर फरदोस में जाएगा। जाहिर है जो इधर नहीं जाएगा फिर उधर ही जाएगा। तो सलीब का पैगाम जिन्होंने कबूल कर लिया उनके लिए खुदा की कुदरत, और जिन्होंने कबूल ना किया उनके नजदीक बेवकूफी। और जो बेवकूफी का पैगाम समझते रहे वो इधर चले जाएंगे, और जो समझते रहे इसके पीछे खुदा है, इस सलीब के पैगाम के पीछे खुदा है। ये हादसा नहीं पेश आ गया, ये अचानक कोई यीशु नाम का बंदा दुनिया में नहीं आ गया था, याद रखिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलने लगा हूं। पैगाम, मैं कह रहा था कि हर चीज बोलती है, हर चीज बात करती है, सलीब भी बोलती है। मैंने स्लाइड में आपके सामने घर बनाया हुआ है, जब हम सिंपल देखते हैं तो ये क्या नजर आता है? शायद कोई स्कूल की बिल्डिंग है, पता नहीं कोई होटल है, पता नहीं क्या है, लेकिन देर समथिंग कोई बंगला है पता नहीं। अब इसको देखने से कोई समझ नहीं आती, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जैसे सोचा जा सकता है। अब सुनना, सलीब कैसे पैगाम देती है। अब अगर इसके ऊपर सलीब लगा दी जाए, इसके ऊपर सलीब लगा दी गई है, अब देखने वाले और सुनने वाला गौर से मेरी बात को सुनो। अब बता सकते हैं अब ये क्या बन गया है? पहले क्या था, न जाने क्या हो सकता है, अब क्या है? अब ने सुनाना शुरू हो गया, ये तो चर्च लग रहा है, ये तो खुदा का घर लग रहा है। मैं आपसे पूछ सकता हूं, किसने बताया ये खुदा का घर है? क्या इस सलीब ने नहीं बताया ये खुदा का घर है? इसका मतलब है सलीब एक पैगाम है कि ये खुदा का घर है। क्या सलीब इस घर को खुदा के साथ अटैच कर देती है? यस, क्योंकि सलीब खुदा की मोहब्बत की खूबी है। सलीब है बताती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा सलीब पर कफारे के लिए दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब जो लोग इस सलीब पर ईमान लाते हैं, हम मानते हैं जी खुदा का बेटा हमारे लिए मसलूब हुआ, अब वो क्या करते हैं? वो इसके अंदर आ जाते हैं। ईमान लाने वाले, सलीब पर ईमान लाने वाले आपको उसके अंदर मिलेंगे। मैं चाहता हूं जरा गलतियों के नाम पौलुस का खत निकालिए, उसका तीसरा बाब, गलतियों के नाम पौलुस का खत है, उसका तीसरा बाब है, 26वीं आयत पढ़िए।
क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो।
अब सुनिए, मैं यकीन करता हूं कि मेरे मसीही भाई तो लाजमी इस बात हमारे मैसेज को सुनते हैं, अगर गैर मसीही भी सुन रहे हैं तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आज वो दोजख से बचने का पैगाम सुन रहे हैं। तुम सब जितनों ने ईट पर ईमान लाए। यस्सु पर ईमान लाने का मतलब होता है यस्सु मसलूब, क्योंकि मसीह सिर्फ मसीह कुछ भी नहीं है जब तक मसीह है मसलूब ना बोला जाए। जब हम यस्सु पर ईमान लाते हैं तो मसीह है मसलूब पर ईमान लाते हैं। फिर दोबारा पढ़िए मेरे बेटे,
क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से,
उस ईमान के वसीला से, हाँ जी,
जो मसीह यीशु में है,
जो मसीह यीशु में हम रखते हैं,
खुदा के फर्जंद हो।
याद रखिए, जो इस पर ईमान लाए वो क्या बन जाता है, खुदा का
फर्जंद।
और आप मुझे बताइए, चर्च के अंदर जो है वो खुदा के फर्जंद है कि खुदा के फर्जंद बोर्ड के बगैर ही गए? हाँ, कोई शफा शफू करिए चला गया तो और बात है, लेकिन अंदर जो है, जो अंदर वही जाते हैं जो इस पर ईमान लाते हैं, और इस पर ईमान लाते हैं वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। यही वजह है इस चर्च के अंदर के लोग जब दुआ करते हैं तो इसी मसलूब होने वाले ने सिखाया था, बेटा जब तुम दुआ करो तो कह रहे हैं हमारे बाप। अब गौर से सुनिए, चर्च के अंदर वाले जो सलीब के पैगाम पर ईमान लाए उनका खुदा क्या बन गया, बाप। और चर्च के अंदर के लोग क्या बन गए, खुदा के फर्जंद। किसके सबब से, इस बेटे के बेटे पर और सलीब के पैगाम पर ईमान लाने के सबब से। आगे,
और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया।
एक मिनट, बड़े ध्यान के साथ इस गलतिया की कलीसिया को पौलुस कह रहा है। क्या गलतिया की सारी कलीसिया कलीसिया नहीं है? हाँ, सारी कलीसिया कलीसिया। क्या इसके अंदर हर आने वाला बंदा कलीसिया नहीं कहलाता? कहलाता है, मसीही कहलाता है। अब गलतिया की जो कलीसिया थी उनको पौलुस कह रहा है, तुम सब जितनों ने हो तो तुम सारे चर्च के लोग, लेकिन तुम में से कुछ ऐसे हैं, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया है। इसका मतलब सब ने नहीं लिया, कुछ ने लिया हुआ है। जिन्होंने ले लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। कुछ होते हैं जो जुबानी जुबानी सलीब पर ईमान लाते हैं, वो गुड फ्राइडे मनाएंगे, ईस्टर भी मनाएंगे, शायद वो 40 रोजे भी रखे हो, मुझे नहीं पता, पाकशाह भी शायद करें, लेकिन ये सब कुछ करना रस्मी तौर पर और बात है, लेकिन मसीह में शामिल होना और बात है। हर चर्च में जाने वाला बंदा मसीह में शामिल नहीं होता, मसीह पर ईमान लाना और है, मसीह में शामिल होना और है। बस तुम सब जितनों इस चर्च के अंदर के लोगों की बात कर रहा है, चर्च के अंदर के लोगों को पौलुस लिख रहा है, ये समझिए दो मिनट के लिए, ये गलतिया की कलीसिया का चर्च है और पौलुस कह रहा है, और तुम सब जितनों ने बैठे तो सारे अंदर हो, गीत तो सारे गा रहे हो, दुआ तो सारे कर रहे हो, रोजे तो सारे रख रहे हो, लेकिन तुम सब जितनों ने इस मसीह में जिसकी स्लीव तुम्हारे ऊपर लगाई हुई है, इस मसीह की बात कर रहा है, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया है, तुमने मसीह को पहन लिया है, तुम डिफरेंट हो गए हो, तुम आम चर्च के लोग नहीं रहे, तुम फर्क हो गए हो। को बताना चाहता हूं, चर्च के अंदर, हर चर्च में मसीही है, हर चर्च के अंदर कलीसिया है, लेकिन कलीसिया में भी कुछ दो किस्म के लोग हैं, कुछ हैं जो मसीह के साथ शामिल हैं, जिन्होंने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ वैसे ही चर्च जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये आपको पता है आप कहां पर है, मुझे नहीं पता आप कहां पर है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिन्होंने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, और जिन्होंने पहन लिया उनके बारे में पौलुस क्या कहता है, पढ़िए जी।
ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी,
हाँ वो फिर यहूदी यूनानियों वाले खाते में नहीं पड़ते, वो मसीही हो जाते हैं। हाँ जी,
ना कोई गुलाम ना आजाद,
हाँ
ना कोई मर्द ना औरत,
हाँ जी,
क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो।
जब तुमने बपतिस्मा ले लिया तो सब मसीह यीशु में क्या हो गए,
एक।
अगर तुम बपतिस्मा ले लिया तो फिर हो सकता है तुम क्या हो, फिर की बात नहीं हो रही, लेकिन बात हो रही है जब बपतिस्मा ले लिया तो फिर मसीह में तुम एक हो गए, ये एक बदन हो गए। आगे पढ़िए,
और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक।
अब फौरी तौर पर सोच लीजिए, जब तुम मसीह के साथ शामिल हुए तो फौरी तौर पर तुम कहां चले गए, दोबारा पढ़िए शायद को,
और अगर तुम मसीह के हो,
अगर तुम मसीह के हो
तो अब्राहम की नस्ल,
तो डायरेक्ट तुम्हारी नस्ल ही बदल गई, बपतिस्मे ने तुम्हारी नस्ल बदल दी, तुम अब्राहम अब्राहम की नस्ल है, जब उसी में शामिल हो गए तो अब्राहम की नस्ल में शामिल हो गए। आगे पढ़िए,
और वादा के मुताबिक वारिस हो,
और चूंकि अब्राहम से वादा किया गया है ऑटोमेटिकली तुम भी वारिस हो गए, विरासत में तुम्हें मिल गई, तुम विरासत के हकदार हो गए। आगे पढ़िए, इतने काफी है। अब मैं बिचारा चर्च में जाने वाले लोग बड़े गौर से सुने स्लीप के पैगाम, स्लीप तो ये लगी हुई है अंदर वालों, लोग तो यही समझ लें कि सारे अंदर वाले स्लीप वाले हैं, नहीं, सिर्फ स्लीप लगाना और बात है और स्लीप वाले को पहन लेना और बात है। तुम सब जितने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, अब ये तो मैं बात कर रहा हूं ये सारे मसीही हैं, इन मसीहों में भी कुछ हैं जो मसीह के हैं और जो मसीह के साथ हैं, अटैच हैं। अब इसके बाहर में तो कुछ दुनिया है, बाहर कितनी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। मैं कहता हूं कि ये अंदर वाले हैं और ये अंदर नहीं, वो सारे बाहर वाले हैं। अब ये जो सलीब है ना लगी हुई, ये चर्च पर लगी हुई और कहीं भी हो, ये सलीब पैगाम दे रही है इस पूरी दुनिया को, दुनिया वालों ईमान लाओ, बपतिस्मा लो, निजात पाओ। जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। तुम्हारा रसूल यहां पर आया, उसने बरसगीर में मनादी की, कब्र प्रस्त और बुत प्रस्तों को उसने पैगाम दी। हमारे बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, मैंने सलाम पेश करता हूं जिस पैगाम पर ईमान लाए, उसके सबब से हम मसीही ठहरे, उसके सबब से हम इस चर्च के अंदर चले गए। अब चर्च के अंदर जाकर हम मसीह के अंदर शामिल हो गए, चर्च में जाना और बात है, मसीह में शामिल होना और बात है। मैं फिर तीसरी दफा कहने लगा हूं, चर्च में जाना और बात है, मसीह के साथ शामिल होना और बात है। अब कुरान में लिखा है एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आप मुझे बताएं जब मसीह आएगा तो किसको ले जाएगा किसको छोड़ देगा? ये तो बेचारे बार वाले हैं, इनको तो छोड़ ही दो, ये तो बेचारे सादा हैं, ये तो अनअवेयर हैं, इनको तभी अवेयरनेस की जरूरत है, इनको तभी खुशखबरी सुनाए जाने की जरूरत है, इन्हीं के लिए तो पैगाम है, इन्हीं के लिए तो यीशु ने कहा था सारी खलक के सामने जाकर इस अंजील की बनादी करो, इनमें से जो ईमान लाए बपतिस्मा ले ले वो निजात पाएगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। मसीह के साथ अटैच होने वालों के लिए दोजख खराब हो चुकी है, यकीन कीजिए, यकीन कीजिए। अब बाहर वालों की बात छोड़ दे, मैं अब अंदर वालों की बात कर रहा हूं। भाई ये जो अंदर वाले हैं जो अपने आप को स्लीप के साथ शरीक करते हैं, स्लीप वाले के साथ शरीक करते हैं, मुबारक जुमा भी मनाएंगे, ईस्टर भी मनाएंगे और अभी पक्षा में भी शरीक होंगे, कल खजूरी द्वार में भी वो परेशान कर नजर आ रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये जो स्लीप के साथ अटैच हो गए हैं या चर्च के अंदर चले गए हैं, इनका क्या रवैया होना चाहिए? जो कह रहे हैं ऐ हमारे बाप, ये बेचारे तो बाप क्या ही नहीं सकते क्योंकि इनको हक नहीं बख्शा गया। कलाम कहता है जितने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम खुदा के बेटे कहलाते हैं, हम इनकी बात नहीं करते, इनको पैगाम दे, लेकिन हम जो अंदर वाले हैं हमारे लिए क्या पैगाम है? अंदर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए तो यह है कि भाई जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। अंदर वालों के लिए जो अंदर आ चुके हैं, जो अंदर आ चुके हैं उनके लिए मैं चाहता हूं उस पैगाम को पढ़ दें। जरा निकालिए मेरे साथ दूसरा ग्रंथियों पांचवा बाब, दूसरा ग्रंथियों है उसका पांचवा बाब है जी,
दसवीं आयत। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए,
हाँ जी,
ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किया हो।
आप सुनिए एक मिनट जरा, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं मसीही लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, खुदा का कलाम, इसको खुदा का कलाम कहते हैं, खुदा पूरी दुनिया का बनाने वाला और संभालने वाला, जिंदगी और रोटी और सब कुछ पूरी दुनिया को दे रहा है। याद रखिए अदालत को सारे मजाक मानते हैं, मैं बाशकाफ अल्फाज में यह बात करने लगा हूं, सारी दुनिया मानती है कि अदालत होगी, लेकिन शायद दुनिया को यह नहीं पता कि तख्ते अदालत में कौन बैठा होगा। तख्ते अदालत में यह मसीह बैठा होगा जिसका पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। 2019 साल पहले कलवरी के पहाड़ पर मसलूब होने वाला खुदा का बर्रा यसु, ये आज दुनिया की अदालत करेगा। पर उसका तय जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने हम सब का हाल जाकर जाहिर किया जाए। कोई भी क्यों ना हो, मर्द हो, औरत हो, रानी हो, जनानी हो, कोई भी क्यों ना हो, यहूदी हो, और हर शख्स अपने कामों का भद्रपण उसने इस बदन में रहकर इस दुनिया में किए हुए हैं, खाचे किए हैं या बुरे। अब अंदाजा करें, दुनिया को पता नहीं कि तख्ते अदालत पे जब जाएंगे, ये तो पता मेरी अदालत होगी, ये नहीं पता करनी किसने है। जब सामने जाएंगे तो हरा रह जाएंगे, वहां पर मेरा मसीह नजर आएगा। और कलाम कहता है उसकी रान पर लिखा हुआ ये बादशाहों का बादशाह खुदाबंद का खुदाबंद है। ओ मसीहो, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि जिसके साथ तुम अटैच हो गए हो, जिसके साथ तुम पैवस्त हो गए हो, कल को वही तुम्हारा आदिल है, वही तुम्हारा मुनसफ है, वही है तुम्हारा सब कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो अंदर वाले हैं ना, अंदर वाले, मैं अंदर वालों की बात कर रहा हूं, बाहर वालों को तो पता नहीं बेचारों को। अंदर वालों, अब जब उसके साथ तुम अटैच हो गए हो या तुम उस पर ईमान ले आए हो, तो तुम्हारे लिए पता क्या है। मैं चाहता हूं एक ही आयत पढ़ दे, काफी है, 15वीं आयत पढ़िए जी।
और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ,
और वैसे तो वो सबके वास्ते मुआ है लेकिन लोगों को पता नहीं, लेकिन जिनको पता है वो जरा दोबारा सुन ले, वो किस लिए मुआ है, वो क्यों सबके वास्ते मुआ है। मैं बाहर जुमा बनाने वालों सुनो, वो सबके वास्ते क्यों मुआ, पढ़िए
कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना
जीते। ओ भाई, ये जो जीते हैं ना, अब वो अंदर वाले हो या बाहर वाले हो, चलो बाहर वालों को तो पता नहीं, अंदर वालों को मैं कह रहा हूं, वो इसलिए सबके वास्ते हुआ ताकि अब ये जो जी रहे हैं मुसाफराना जिंदगी थोड़े अरसा के लिए, 40, 50, 70, 80, 90 जितने भी साल है, वो अपने लिए ना जिए, तो फिर किसके लिए जिए?
बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ,
बल्कि उसके लिए यानी मसीह के लिए जिए जो उनके वास्ते हुआ है।
और फिर जी उठा,
और फिर जी भी उठा है, मारी नहीं गया, मरा ही नहीं रहा, नहीं, जी भी उठा है, स्मरण पर है, आएगा। जो मसीह में है, जो शामिल हो चुके हैं, चर्च जाना और बात है, मसीह में शामिल होना और बात है, जो नजात पा चुके हैं, जो उसके पैगाम को कबूल कर चुके हैं, उनको ले ले आएगा। जब ले जाएगा, 7 साल ज़ियाफ़त होगी, उसके बाद इसी मसीह की 1000 साल बादशाहत होगी, फिर अदालत होगी, अदालतें आम होगी। जब अदालतें आम होगी तो सारी कौम उसके आगे जमा की जाएगी। मसीह यीशु ने खुद कहा, मत्ती की झील के 25वें बाब में लिखा हुआ है, जब बिरयादम अपने जलाल में आएगा, सारी कौमें, मुझे नहीं पता वो कौन कौन सी कौमें, शायद अभी है भी क्या नहीं, सारी कौमें उसके सामने जमा की जाएगी। और वो ऐसे उनको जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, भेड़ों को अपने दाने, ये है भेड़े, इसके अंदर होती है भेड़े, इसके बाहर वाली भेड़े नहीं होती। तो ये सबसे कहा था, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे चलती है, मेरी बात को मानती है। अगर मैंने कहा है तो दुश्मन और ऐसे से पैदा हो तो वो मानती है, बहस नहीं करती मेरे साथ, मेरी आवाज सुनती है, मेरे पीछे चलती है। इन्हीं को खुदावंद दाने खड़ा करेगा। और अफसोस उन पर जो इस चर्च के अंदर जाकर मसीह के साथ शामिल ना हो और पैगाम को बेवकूफी का पैगाम समझे, स्लीप का पैगाम उनके लिए बेवकूफी है, जो मानते नहीं, जो बपतिस्मा नहीं लेते, जो तौबा नहीं करते, जो नए सिरे से पैदा होने की तालीम को पता नहीं भाइयों की तालीम या किसकी तालीम समझते हैं, और ये यस्सू की तालीम है, ये यस्सू की तालीम है, तो मैं नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। मैं चाहता हूं इस पैगाम को अपने दिल में रख रहे, हलाकत से बचने का और कोई तरीका नहीं, जहन्नम की आग से बचने का और कोई रास्ता नहीं, सलीब एक वाहद रास्ता है जो जहन्नम से बचा सकता है। सलीब का पैगाम आपको जहन्नम से बचा सकता है। मैं कहता हूं अभी कबूल कर लीजिए, इस पैगाम को अभी कबूल कर लीजिए। ये कोई आम वाकया नहीं, ये तारीख का सबसे बड़ा और अहम वाकया है। इसके पीछे खुदा है, ये कोई मसीहों का बनाया हुआ प्रोग्राम नहीं है, खुदाए जुलजलाल खुदाए वाहद का प्रोग्राम है। आइए इस पैगाम के आगे सर खम कर दीजिए, सर झुका लीजिए। अरे खुदावंद यीशु, मुझे समझ आ गई है, मुझे तेरे साथ व्यवस्थ होना है। जब मैं तेरे साथ व्यवस्थ हो जाऊंगा, मुझे दुआएं समझ आई है, कल को मेरी अदालत भी तू नहीं करनी है, जज के साथ, चीफ जज के साथ, चीफ जस्टिस के साथ, चीफ जस्टिस यीशु मसीह है चीफ जस्टिस जो तख्त अदालत पे बैठा होगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, अगर आप इस पैगाम को कबूल करते हैं, श्री पैगाम दे रही है पूरी दुनिया को, जहन्नम से बचने का एक ही रास्ता है। यूं ये सुन सकती है, स्लीप का पैगाम जहन्नम से बचने का पैगाम है, दोसर की आग से बचने का पैगाम है। इसको मसीहों का पैगाम ना समझना, इसको इंटरनेशनल मैसेज है। खुदा जलाल, मैं पूरी दुनिया के सामने खड़ा हूं और पूरी दुनिया के लिए दुआ करता हूं। मेरे खुदावंद, पाक खुदावंद, शुक्र करता हूं सबसे पहले तूने हमें इस बात के लिए तैयार किया कि हम तेरे पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाए, ताकि लोग जहन्नम से बच जाए। मेरे खुदावंद, मैं बाहर वालों के लिए दुआ करता हूं तेरी सलीब के पैगाम को समझ जाए, और मैं अंदर वालों के लिए भी दुआ करता हूं मेरे खुदावंद, जो स्लीप तो उठाए हुए हैं, स्लीप तो उन्होंने लटकाई हुई है, घरों पे भी लगाई हुई है, लेकिन शायद इसके पैगाम को नहीं समझे। वो बपतिस्मा ले, ईमान लाए, बपतिस्मा ले, निजात पाए। ऐ मेरे खुदावंद, और तेरे पीछे चले, क्योंकि तेरी बेड़े वो हैं जो तेरे पीछे चलती है, तेरी आवाज सुनती है। कोई इस पैगाम को बेवकूफी का पैगाम ना समझे, रूए जमीन स्लीप के पैगाम से वाकिफ हो जाए, ताकि जहन्नम की आग से बच जाए मेरे खुदा। और हमें जिसको तूने तूने निजात दी है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। हमें अपने पीछे पीछे चलने का फसल अदा कर मेरे खुदावंद। ऐ मालिक हकीकी, इससे पहले कि तुम आसमान पर ले जाने के लिए आए, जब तू आए तो हमें तैयार पाए मेरे खुदावंद। मेरे खुदा, तेरे यीशु नाम के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ मेरे साथ मिलकर मांगी।
हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे, खुदावंद अपना जलाले चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबानी रखे, खुदावंद अपना जलाले चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।